أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. لاسٹ ٹائم ہم نے لاسٹ ویکینڈ پہ بات کی تھی، اور لاسٹ ٹائم بات یہ ہوئی تھی کہ سب سے جو بڑا بیریئر ہے یا سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے انٹرپرینور بننے میں، وہ سائیکولوجیکل یا سائیکو کلچرل بیریئر ہے، اور جس میں ہم یہ تعین نہیں کر پاتے ہیں یا ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہوتا، اور ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اور ہم کام کر نہیں پاتے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں یا سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں بزنس میں، یا فار دیٹ میٹر کسی بھی فیلڈ میں سکسیز ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے. اور وہ یہ لاسٹ ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے. جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکشن کی تھی اس میں یہ بات کی تھی کہ دو میں نے آپ کو ایکسرسائزز بتائی تھیں، دو ٹپس بتائی تھیں پریکٹیکلی کرنے کے لیے. ایک آپ سے کہا تھا کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم 10-15 منٹ اکیلے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط قائم کریں، میڈیٹیشن کریں، اور اس بات پہ غور کریں کہ آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے، آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا آپ کو ایک کامیڈی شو دیکھنے کے لیے کہا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. آج ہم یہ بات کریں گے کہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، یا بزنس میں سکسیز کے لیے یا کسی بھی فیلڈ میں سکسیز کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کیا ہے. تو پہلا اسٹیپ ہے آپ کے مائنڈ کی پاور کو ڈسکور کرنا، یا آپ کو سیلف ڈسکوری از دا فرسٹ اسٹیپ. ٹھیک ہے، ڈسکورنگ یور ہڈن ٹریئرز of discovering your hidden talents or discovering your hidden skills یا abilities، کہ آپ اپنی hidden abilities کو discover کریں. اس کو ہم مزید کچھ آپ کو ٹپس دیں گے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر کے اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کی طرف یا اپنی کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھائیں. دیکھیں، دنیا میں جو انٹرپرینیورشپ یا بزنس کی فیلڈ میں ریسرچ ہوئی ہے، اس میں جو انٹرپرینیورس ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں یا ان کی جو پرسنالٹیز کا انالیسس کیا گیا، تو اس کے ان کی بیسس پہ انٹرپرینیورس کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ یہ سکسیزفل انٹرپرینیورس کی یہ کوالٹیز ہیں، یا یہ ان کا اسکل سیٹ ہوتا ہے، یا یہ ان کے سائیکومیٹرکس ہوتے ہیں، یا یہ ان کی پرسنالٹی میں یہ ڈائنمکس ہوتے ہیں. دیکھیے، ان میں سے ایک اہم چیز انٹرپرینیورس کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہائر ہوتا ہے ان کے ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کے مقابلے میں. ہم اس کو آگے ایکسپلین کریں گے کہ واٹ ڈو وی مین بائی انٹرنل لوکس آف کنٹرول اینڈ واٹ ڈو وی مین بائی ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول اینڈ ہاؤ ٹو ریز یور انٹرنل لوکس آف کنٹرول، ہم اس بارے میں بات کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیڈ فار اچیومنٹ. انٹرپرینیورس کی جو نیڈ فار اچیومنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا جو چیز ہے وہ انٹرپرینیورس کا رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے. اور چوتھا ان کا ایمبیگوئٹی ٹالرنس ہے، اور اس کے علاوہ ان کی پرسنل ویلیوز ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ ساری چیزیں کیسے گین کی جائیں اور ان کو کیسے امپروو کیا جائے. اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہائی ہے یا لو ہے، یا ہمارا ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول ہائی ہے. انٹرنل لوکس آف کنٹرول کی سادہ ترین الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کی زندگی، کیا آپ کی ڈیسٹنی، کیا آپ کے فیصلے، کیا آپ کا مقدر خود آپ کے اختیار میں ہے یا لوگوں کے اختیار میں ہے. کیا آپ ہر بڑے یا چھوٹے فیصلے پہ، ہر انسان فیصلہ کرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یا اس میں کنسیڈریشنز کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے. مشورہ لینا ٹھیک ہے، گائیڈنس لینا از ناٹ رانگ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہر بڑے چھوٹے فیصلے میں لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیا اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مطلب طے کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ دیکھیں، ماں باپ بہن بھائی سے مشورہ لینا، ان کی گائیڈنس پہ چلنے کے میں خلاف نہیں ہوں، लेकिन अगर आप मेच्योरिटी एज में हैं और आप इस एज में हैं, तो आपको अपने फैसले का, अपने मुकद्दर का तायुन खुद करना है। अगर आप समझते हैं कि आपके माँ बाप का एक्सपोजर इतना नहीं है एजुकेशन में जितना आपका है, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं जिस चीज़ पे आप खुद कन्विंस्ड हों। ठीक है, मशवरा लेना इज समथिंग एल्स, गाइडेंस लेना इज समथिंग एल्स, एडवाइस लेना इज समथिंग एल्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं फला बंदा हमारे लिए बता दे, जो वो बताएगा मैं वो करूँगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट बियरेबल। अगर आप अपने फैसलों का तायुन खुद करते हैं, तो आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आपके इख्तियार में है, या आपके इमोशंस आपके इख्तियार में है। अच्छा, इसका एक रूहानी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव भी है। मेरे नज़दीक तो दीन और दुनिया एक ही चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं दुनियावी उलूम दुनियावी उलूम, और बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप लोगों को मादापरस्त बना रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमान बिजनेस करे। अल्लाह ने अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस बात की तशबीक दिलाई है कि कारोबार करें। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बड़ी ताजिरा थी। तो ज़्यादातर रिस्क अल्लाह ने कारोबार में रखा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आप दीनी उसूलों के तहत ईमानदारी से और लोगों के हकूक़ अदा करते हुए, सदका ज़कात जो भी हकूक़ हैं वो अदा करते हुए अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच रहे जिसमें जिसको लिए दीन ने मना किया है, तो आपका बिजनेस अल्लाह के नज़दीक आप बहुत अल्लाह के नज़दीक आपका बहुत मर्तबा है, आप बहुत तकर्रुब हासिल कर सकते हैं। आप रूहानी पर्सपेक्टिव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का ये है कि बाज़ दफ़ा हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे नफ्स अम्मारा के कंट्रोल में होता है या शैतान के कंट्रोल में होता है। और हमें अगर मसलन मैं आपको मिसाल दे के वादा करता हूँ कि हम गुनाह को देखते हैं तो गुनाह की तरफ हम फौरन से लपक पड़ते हैं। इसका मतलब है कि हमारा नफ्स हमारी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है, तो उस ख्वाहिशात की गुलामी में हम बह जाते हैं। इसका मतलब है हम आज़ाद नहीं होते, हम अपनी ख्वाहिशात या अपने नफ्स हमारा के गुलाम होते हैं, टू बी वेरी कॉन्साइज। सिमिलरली, अगर आपके फैसले लोगों के कंट्रोल में हैं, तो आप आज़ाद नहीं हैं। आप मेंटली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली आप आज़ाद नहीं हैं। जिस्मानी तौर पे आज़ाद होंगे, लेकिन आप गुलाम हैं कि लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, लोग चला रहे हैं। अब अगली बात यह है कि इस इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप कैसे अपनी इतने अरसे आपकी ज़िंदगी के 18, 19, 20, 25, 30 साल या जितनी भी आपकी ज़िंदगी आप एक ख़ास आदत से रहे हैं, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुदा पे तवक्कल करके अपने फैसले खुद करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इम्प्रूव हो जाएगा। आप रोज़ाना नोट करें कि आज कितनी बार आपने कोई काम करते हुए या कोई फैसला करते हुए कितनी बार आपने दूसरे से पूछ के वो काम किया, और उसके बाद उसको रोज़ाना की बेसिस पे रेट करें। वैसे एक हदीस भी है कि जो शख्स रोज़ाना अपना मुहासिबा नहीं करता वो हम में से नहीं है। बहरहाल, ये एक अच्छा तरीका है कि आप एक डायरी रखें, रोज़ाना रात को बैठें और वो सोने से पहले लिख लें कि भाई ये आज काम फला मैंने किया था, मैं खुद भी कर सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी चीज़ है वो नीड फॉर अचीवमेंट है। आप देखते हैं, हम टीचिंग में हम देखते हैं कि हमारी क्लास में जनरली स्पीकिंग तीन सतह का स्टूडेंट होता है या तीन तरह का स्टूडेंट होता है। एक वो होता है जो बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, जो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता है, बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है, या उसकी अचीवमेंट बहुत हाई होती है, नीड फॉर अचीवमेंट, कि वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। एक होता है कि बस मुनासिब से नंबर आ जाए, पास हो जाऊं, और बस बुरे नंबर नहीं आए, बी ग्रेड आ जाए, बस इस तरह से होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल ही बेचारे मरे हुए होते हैं जहनी तौर पे। वो कहते हैं बस यार हम आ गए हैं, बस पढ़ना नहीं चाहते थे, हमें भेज दिया है, बस किसी न किसी तरह डिग्री हो जाए, बस जान छूट जाए। इसका मतलब है कि हम नीड फॉर अचीवमेंट के लिए तीन तरह के हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। लो नीड फॉर अचीवमेंट अचीवर्स, और मॉडरेट जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट होती है, और हाई नीड फॉर अचीवमेंट। अगर आप देखते हैं कि आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है कुछ हासिल करने के लिए, तो बिजनेस ऐसी चीज़ नहीं है जो, या कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कोई दूसरा आपसे करवा ले। मोटिवेशन आपके अंदर से आती है, इंटरनल या इंट्रेंसिक मोटिवेशन आपको कामयाबी दिला सकती है। हर फील्ड में कोई दूसरी चीज आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। देखें, फैज अहमद फैज साहब की एक बहुत मशहूर नज़म है, मेरे हमदम मेरे दोस्त। उसमें फैज साहब ने बहुत तमीद बांधने के बाद आखिर में ये नतीजा दिया है कि तेरे आजार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी जी रूह के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। तो कह रहे हैं भाई, तुम्हारा जो आजार है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, या तुम्हारा जो मर्ज है, या तुम जो हासिल करना चाहते हो, उसका चारा या उसका इलाज मेरे पास नहीं है। तेरे आजार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, उसका इलाज तकलीफ के सिवा नहीं है। नश्तर यानी वो जब इलाज करते हैं, जो सर्जन ऑपरेशन करते हैं, तो वो सीजर से या उससे कट लगा के वो नश्तर से कट लगाते हैं। तेरे आजार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, यानी नश्तर तकलीफ देता है, यानी तेरा इलाज तकलीफ या मेहनत या जद्दोजहद या कोशिश या मुश्किलात के बगैर नहीं है। इस्तियारा इस्तेमाल किया। और फिर फैज साहब कहते हैं कि और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, और ये जो सफाक मसीहा है, यानी नश्तर सफाक है, जालिम है, तकलीफ दे के इलाज करता है। मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम मसीहाई करते थे, इलाज करते थे। तो ये जो सफाक मसीहा है, जो जालिम मसीहा है, जो तेरी इलाज करता है, तेरे तकलीफ दे के, ये मेरे कब्जे में नहीं है। और ये नहीं कि मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी जीरू के कब्जे में नहीं। अलग जहां का जीरू तो छोड़ो, अल्लाह ताला जो है वो फरिश्ते भी नाजिल नहीं करता जब तक इंसान खुद अंदर से नहीं हो तैयार। तो ये अल्लाह का हुक्म ऐसा है, अल्लाह की सुन्नत ऐसी, अल्लाह का तरीका ऐसा है। तो जब लेके, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे, तो जो इलाज जो है वो हमने खुद करना है। तो हमें खुद के बारे में पहचानना है पहले, कि आपकी जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की हैं, क्या वो आपके अंदर मौजूद हैं। अगर नहीं है मौजूद, तो उनको पॉलिश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पॉलिश किया जा सकता, पॉलिश बिल्कुल किया जा सकता है। तीसरी चीज है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। आप अपना रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत आसानी से जज कर सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट अ बिजनेसमैन और आपने कभी बिजनेस नहीं किया। आप अपने ऊपर थोड़ा गौर करें, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कभी आपने नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करते हैं, कभी आप मसलन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, कोई नई डिश जिसका नाम ही नहीं सुना हो, कोई चाइनीज अफगानी डिश आपने कभी ऑर्डर दे के देखा है कि यार इसमें होगा क्या, चलो ट्राई करते हैं। या कहीं आप अपने घर जाते हुए या कहीं जाते हुए खास रास्ता आप हमेशा यूज करते हैं, किसी दफा आपने ये ट्राई किया कि किसी नए रास्ते से होके चलते हैं, तो ये इससे आपको अपना किसी हद तक रिस्क टेकिंग बिहेवियर का अंदाजा होगा। इसके लिए आप इंटरनेट पे ओवरऑल अपनी एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी, अपनी एंटरप्रेन्योरियल पावर का भी एनालिसिस कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे टेस्ट मौजूद हैं, फ्री भी हैं और पैसे दे के भी हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आप कर लें, पैसे दे सकते हैं तो पैसे दे के कर लें, वो आपका कंप्लीट एनालिसिस करके बता देते हैं, ठीक है। अलबत्ता उनमें बहुत सारे टेस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर का आप अलग से टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे, उन सवालों के जो जवाब आपके जहन में आए फौरन से वो लिखें, ज़्यादा सोच के ना लिखें, तो सही टेस्ट का रिजल्ट आएगा। उसके अलावा एम्बिगुइटी टॉलरेंस ये है कि आप अनक्लियर या अनसर्टेन सिचुएशन को कितना टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल इंसान का अनसर्टेन होता है, बिजनेस का मुस्तकबिल बहुत अनसर्टेन होता है। आप देखते हैं कि आप एक काम करने जा रहे हैं और पता नहीं यार मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, लगी बंदी रोजी लग जाए, ये हो जाए। तो बाहिम्मत लोगों का काम है एंटरप्रेन्योर बनना, जुर्रतमंद लोगों का काम है जो अनसर्टेन सिचुएशंस को टॉलरेट कर पाते हैं। अब हमने ये बात तो कर दी कि ये चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं, और इन इनके बारे में जानना, और मैंने आपको किसी हद तक इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी टिप्स भी बताई हैं। मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप है कि आप अपने आप को डिस्कवर करें कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की सलाहियतें मौजूद हैं या नहीं है। और ये एक मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं, वो बन नहीं सकते, ऐसा नहीं है। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, जिस पे एंटरप्रेन्योरियल इंटेंट्स बहुत ज़्यादा टेस्ट हुई हैं, सोशल कॉग्निशन थ्योरी बंदूरा की, उस पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग्स हुई हैं। उसके अलावा रॉबर्ट डी हिसे, शपीरो और पता नहीं कितने ऑथर्स ने इसको टेस्टिफाई किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी टॉट, यू कैन बी मेड एंटरप्रेन्योर, यू कैन लर्न एंटरप्रेन्योरशिप विद सर्टेन नॉलेज एंड स्किल सेट एंड एक्सरसाइजेस, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अगर आप में वो सलाहियतें नहीं भी हैं तो आप उनको पॉलिश कर सकते हैं, आप अपने रिस्क टेकिंग बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप लो रिस्क टेकर हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ आप मूव हो सकते हैं, मॉडरेट रिस्क टेकर की तरफ मूव हो सकते हैं, अगर आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल लो है तो वो हाई हो सकता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की एक और भी मजाही बात है कि कुछ लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उनकी बेगम के हाथ में होता है तो वो सारे काम, मतलब आपके एंटरटेन करने के लिए सारे काम अपनी बेगम के कहने पे कर रहे होते हैं। तो ठीक है, होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, वो कुछ हुकूक बेगम के भी होते हैं, जहाँ तक उनका इख्तियार है घर तक, तो उसके मामला उसके हाथ में देना चाहिए। मतलब आपको ज़्यादा इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए जो लोग शादीशुदा है, मतलब मेरा ये ज़ाती ख्याल है, आज खाने में क्या पक रहे हैं वो बेगम जो पकाना, इतनी तो आज़ादी उसका हक बनता है ना जी, इतनी आज़ादी तो चाहती है। हाँ, आपका बिजनेस क्या करना है बाहर के मामला में, चूंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है बेचारी का, इसलिए उसकी राय की अहमियत नहीं है ना, ये कि वो कम अकल है और फलान पे ये जो पोल्टी सीधी बातें लोग करते हैं, उसका उसमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाहर मामला आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिजनेसेस, उसमें जो हाउस वाइफ्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका चूंकि इतना नहीं होता एक्सपोजर, वो उसमें दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते, ठीक है नहीं? उसके अलावा दोबारा मैं इसको एम्फेसाइज करूंगा कि इंसान के माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है और एक राइट हेमिस्फेयर होता है ब्रेन का। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना वो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, हम जो आम कामों में हम जो लॉजिक्स है ना, रैशनल बिहेवियर लेफ्ट नॉलेज ब्रेन स्किल से आता है, तो ये लेफ्ट ब्रेन जो है ये क्रिएटिविटी नहीं देता अनफॉर्चुनेटली, ये आपको ज्यादा माइंड के पावर को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं देता। जो लोग क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटर होते हैं, वो ज्यादा राइट ब्रेन को यूज करते हैं, राइट ब्रेन ब्रिंग्स यू क्रिएटिविटी। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कहें कि किसी झील जैसे इस्लामाबाद में वो रावल लेक है, उसके दरम्यान में एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा, आपका एक बिजनेस आइडिया है, दरम्यान में रेस्टोरेंट होगा, फ्री फ्लोटिंग होगा, ठीक है, कोई भी जो बंदा है वो उसका नीचे से कोई पिलर भी नहीं होगा, ऊपर से भी हैंगिंग भी नहीं होगा, फ्री फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा हवा में, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मेरा भी मजाक उड़ाएंगे कि अभी कैसी बात है, इलॉजिकल सी बात है। लेकिन राइट हेमिस्फीयर की ब्यूटी ये है कि वो लॉजिक से आजाद होके सोचता है, तो जब वो लॉजिक से आजाद होके सोचता है, लॉजिक की कैद से आजाद कर देता है इंसान को, तो फिर क्रिएटिविटी या आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जहन में आती हैं। लेकिन ये राइट हेमिस्फीयर को एनरिच कैसे किया जाए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स इसके लिए इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे, बाकी जगहों पे बहुत मौजूद है उस पे स्टफ, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उसका जो है वो टिप बताता हूँ कि मेडिटेशन करें। अगेन बात वही आ जाती है कि रोजाना सोचें, देखें इस्लाम में कहा गया है कि एक साथ की फिक्र या एक घंटे की फिक्र, तफक्कर साआ अफजल मिन इबादत, वो कि एक जो है ना वो घंटे की फिक्र इंसान के लिए कई हजार साल की इबादत से अफजल है, इसलिए कि एक घंटे की फिक्र इंसान को हिदायत याफ्ता कर सकती है, उसकी रूह में तरक्की ला सकती है, ठीक है। तो आप देखें थ्रू आउट कुरान जो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया वो किस पे किया गया, अफला ततफक्करून, अफला ततदब्बरून, तुम तदब्बर नहीं करते, तुम गौर नहीं करते, क्या तुम गौर करने वाले हो, फिक्र करो, गौर करो, तो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है फिक्र करने पे, सोचने पे, आप अपने बारे में फिक्र करें, सोचें। फिक्र का मतलब ये नहीं कि आप टेंस हो जाएं, मतलब तफक्कुर करें, गौर करें, और गौर करने के लिए जैसे मैंने कहा कि 10-15 मिनट, 20 मिनट रोजाना कम से कम ये सोचें कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आपका मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है, और खुदा से दुआ करें अल्लाह ताला आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके कल्ब पे वदियत करेगा वो मकसद, और आपको गाइड करेगा अल्लाह, जो है ना वो हिदायत देता है इंसान को, बराह रास्त भी हिदायत देता है, और वो इंसान के कल्ब में वो हिदायत जो है वो उतारता है, अगर हम ईमान रखें अल्लाह की जात पे, यकीन रखें। जब ये सब काम आप करेंगे तो आप अपनी सलाहियतों और अल्लाह अपने अल्लाह पे पुख्ता भरोसा और यकीन के साथ इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब आप इस यकीन के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि जो अगला स्टेप है वो आप अपने बिजनेस के लिए गोल सेटिंग कैसे करें, कि बिजनेस करने से पहले भाई ऐसे ही शुरू हो जाए, हवा के थप्पड़ों पे रहे, हवा आई और वहां से यहाँ ले गई, और हवा आई और यहाँ से वहां ले गई इंसान को ना। आप अपनी डेस्टिनी, आप अपना फ्यूचर अपने कंट्रोल में करें जिस हद तक कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला की जात में। मैन इज टू प्रपोज एंड गॉड इज टू एग्जीक्यूट। आपने जो करना है, आपने जो सोचना है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बिल आखिर फैसला वहाँ से अल्लाह की तरफ से होना है। लेकिन हम बिल्कुल भी कैद नहीं है, मैं जबर का कायल नहीं हूँ, अकीदा जबर का कायल नहीं हूँ। अल्लाह ने इंसान को अकल दी और अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने अच्छे बुरे का फैसला करे और इंसान तरक्की करे। तो गोल सेटिंग हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वीकेंड पे हम इस पर बात करेंगे, और मैं भी इसमें ज़्यादा और कोशिश करूँगा पढ़ने की। लेकिन आपसे जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके साथ साथ ये भी एक्सरसाइजेस लें कि आप कागज़ कलम लें, देखें कुरान मजीद में नून वल कलम इकरा, नून वल कलम फसीरू फिल अर्ज, ये नॉलेज के सोर्सेज डिफाइन किए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, के पढ़ें नून वल कलम, उसके अलावा फसीरू फिल अर्ज के, या आप ज़मीन में घूमें फिरें और देखें कि गुज़श्ता उम्मतों की क्या हालात हैं, और जिन्होंने तकजीब की थी उनके साथ खुदा ने क्या किया, उनके खंडक बन गए। अब ये आप कुरान में तफसीर पढ़ सकते हैं। यकीन हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है, या मार्फत नफ्स हासिल करने के जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो सोच है, लेकिन उस सोच के साथ साथ कुरान का जो मुतालिया है, कुरान का तर्जमा, तिलावत का सवाब अपनी जगह है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको तर्जमा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब देगा। आप आयात को समझने की कोशिश करें। रमज़ान बेहतरीन महीना है कि आप कुरान मजीद को पढ़ें तर्जमे के साथ, तो अल्लाह ताला आपको अपनी मार्फत अता करेगा और अल्लाह ताला आपको आपके नफ्स की मार्फत अता करेगा। जैसे पहले मैंने अर्ज किया था, हदीस है कि मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू। आप अपनी मार्फत, इतना अहम खुदा ने रखा है इस बात को, और बड़े बड़े औलिया ने, अम्बिया ने, औसिया ने इस बात को वैलिडेट किया है कि नफ्स की मार्फत बहुत अहम है। लास्ट टाइम हमने अल्लामा साहब की बात की थी। तो आप ये एक एक्सरसाइज करें कि कागज़ कलम ले लें, और कागज़ कलम लेकर बैठें और अपनी ज़िंदगी का मकसद लिखना शुरू करें। लिखें आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखने के बाद अपनी गोल सेटिंग करें। आप मसलन नेक्स्ट टाइम जब आप मिलें तो आप लिख के रखें अपने सामने एक हफ्ते तक कि आपकी ज़िंदगी के 5 रूहानी गोल क्या है, आपके दीनी गोल क्या है, आप क्या खुदा के नज़दीक, कितना नज़दीक होना चाहते हैं, क्या करेंगे वैसे हो जाएंगे, 5 गोल्स लिख लें। उसके अलावा आप अपने 5 या 10 बिजनेस गोल्स लिख लें कि आपका बिजनेस, आप कितना बड़ा बिजनेस चाहेंगे, आप 30 साल बाद मिलियनेयर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, फिर उन गोल्स को सेग्रीगेट कर लें, इस तरह से लिखें। उसके बाद आप अपने 5-7 फैमिली गोल्स भी तो लिखें ना। आप यू हैव टू हैव अ सक्सेसफुल पर्सन हैज टू हैव अ सक्सेसफुल फैमिली लाइफ एज वेल। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है एंड योर फैमिली इज डिस्टर्ब, यू विल नॉट फाइंड योर पीस ऑफ माइंड। आप देखें हजारों लोग आज ऐसे हैं, मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, लेकिन वो इस तरह मुतमाइन नहीं है, वो स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, वो भी लिखें। उसके अलावा आप एजुकेशन के गोल्स भी लिखें। आप क्या और फॉर्मल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, इनफॉर्मली आप अपने आप को इनरिच करना चाहते हैं, कोई किताबें पढ़ना चाहते हैं, कोई इस तरह की बात, कुछ ट्यूटोरियल्स लेना चाहते हैं। आप अपने 5 हेल्थ गोल्स भी लिखें। अगर आपका मेरी तरह पेट बढ़ा हुआ है, वजन ज़्यादा है, तो ये भी लिखें कि आप अपना वजन किस तरह कम करेंगे, आप या जो भी आपके हेल्थ गोल्स हैं, शुगर लेवल एक्सेट्रा, क्योंकि ये भी सक्सेसफुल रहने के लिए इंसान का हेल्दी होना भी तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप अपने जो 5 या 10 एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के भी गोल्स लिखेंगे। आप जब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे तो उसके साथ साथ आप लोगों की भी तो मदद करेंगे, आप कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी तो करेंगे, कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट करेंगे, कोई अस्पताल खोलेंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, कोई क्या मस्जिद बनाएंगे, वट एवर। उसके अलावा को आप अपने 5-10 एंटरटेनमेंट के गोल्स भी लिखें, ऐसी एंटरटेनमेंट को घूमना फिरना, कोई दोस्तों के साथ गपशप लगाना, दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ऐसी एंटरटेनमेंट जो खुदा और रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं है उन, तो इंशाल्लाह ये सब करें तो अगली वीडियोस में हम मिलेंगे। तो उसके अलावा ये आपसे अर्ज करना था कि मैं इंशाल्लाह आइंदा 2-3 दिन में एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, पहले भी मैंने एक वीडियो लगाई थी जो हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो मेरे साथ एक स्कर्दू के दोस्त थे, तो उनके इलाके में जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है उससे हमने डिस्कशन की थी। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो लगाऊंगा, एक सिंध के एक गांव की है कि कैसे उन्होंने अपने गांव की तकदीर बदली। तो वो मेरी नहीं है वीडियो, उनकी है, लेकिन जिनकी है वीडियो मैंने उनसे परमिशन ली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, ताकि हम पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी, दैट्स पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसको भी फ़र्क दें। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो हम गोल सेटिंग पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा ताकि हम अपने काम को इम्प्रूव कर सकें।